कृष्ण, आप सभी भक्तों का आज के भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। और हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में आज उपस्थित हैं परम पूजनीय वेद व्यास प्रिय स्वामी महाराज। हरि हरि बोल। महाराज बहुत ही लंबे अरसे के बाद यहाँ पे आ रहे हैं और आज भी एक बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज था। सुबह लगभग 6:30 के आसपास फोन आया कि महाराज उपलब्ध हो सकते हैं, तो हमने अपने बहुत सौभाग्यशाली पाए अपने आप को कि महाराज हम इतना काफी समय के बाद आज यहाँ पर आए हैं। एक संक्षिप्त परिचय वेदव्यास स्वामी महाराज जी का। महाराज जी का वैसे जन्म भारत में गुजरात में हुआ था, फिर इनकी पूरा परिवार ईस्ट अफ्रीका में मूव किया तो महाराज भी वहाँ गए, फिर महाराज यूएस में गए, वहाँ पे महाराज ऐसे बायोकेमिस्ट जॉब कर रहे थे और उसके साथ साथ फिर उनका प्रभुपाद के शिष्यों से संपर्क हुआ, फिर महाराज ने इस्कॉन आंदोलन को ज्वाइन किया और अमेरिका में यूएस में काफ़ी महत्वपूर्ण सेवाएँ की। उसमें एक महत्वपूर्ण सेवा थी कि महाराज ने अमेरिका के जैसे देश में श्रीनाथ जी के विग्रह को स्थापित किया। ये विग्रह पहले न्यूयॉर्क मंदिर में थे, फिर बाद में फिर वेस्ट वर्जीनिया न्यू वृंदावन में आए। इसके बाद महाराज ने वहाँ पे यूएस में पर्सनल सेक्रेटरी जीपीसी भी रहे, प्रेसिडेंट ऑफ क्वींस टेम्पल न्यूयॉर्क और डायरेक्टर ऑफ भारतीय कम्युनिटी सर्विसेज इन न्यू वृंदावन वेस्ट वर्जीनिया में रहे। 1987 से महाराज फिर भारत में प्रचार करना शुरू किया। भारत में महाराज वृंदावन में भी थे और भरतपुर में एक बहुत सुंदर महाराज ने एक सेंटर बनाया था और साथ ही साथ महाराज रीजनल सेक्रेटरी रह चुके थे पंजाब और हरियाणा के और NIDC नॉर्थ डिविजनल काउंसिल के चेयरमैन रहे 7 वर्षों तक। उसके साथ साथ महाराज जोनल सेक्रेटरी भी रहे ईस्टर्न यूपी बिहार और झारखंड मंदिरों के। इस समय महाराज सभी मैनेजरियल सेवाओं से निवृत्त हैं और पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं, विशेषकर ऑस्ट्रेलिया में और फिजी आइलैंड में बहुत सुंदर मंदिर महाराज ने बनाया है। और हालांकि महाराज का स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं रहता, लेकिन महाराज हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, ट्रेवल करते रहते हैं और बहुत प्रसिद्ध है अपने मधुर कीर्तन के लिए और बहुत ही फिलोसफिकल लेक्चर्स के लिए। और साथ ही साथ व्यक्ति रूप से महाराज बहुत प्रेम देते हैं, जो भी महाराज की शरण में जाते हैं महाराज बिल्कुल ऐसा पर्सनल टच देते हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में परम पूजनीय वेद व्यास स्वामी महाराज जी हैं और साथ ही साथ हम स्वागत करेंगे हिज ग्रेस शिव राधे प्रभु जी का। शिव राधे प्रभु जी श्रील प्रभुपा जी के शिष्य हैं और ये महाराज के साथ ही भ्रमण करते हैं। तो आइए दो महान भक्तों का हम स्वागत करें हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने मोबाइल फोन्स को कृपया साइलेंट या स्विच ऑफ मोड पे कर दें। हरे कृष्णा।
हम तो भोले भट्ट के यहाँ कैसे पहुंच गए पता ही नहीं, देशाभ्रमित होते हैं। आपने याद दिलाया फोन के बारे में, तो हमारे साथ बचता है और बीच में ही दखलगिरी करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद अध्याय 5वां की शुरुआत करते हैं, श्लोक संख्या 1 और 2। सर्वप्रथम संक्षिप्त में इस अध्याय में प्रभुपाद जी ने क्या कहा है वो हम पढ़ लेते हैं। इस अध्याय में बतलाया गया है कि नंद महाराज ने अपने नवजात शिशु का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। इसके बाद वे कंस को कर देने गए थे तथा अपने घनिष्ठ मित्र वासुदेव से मिले। कृष्ण जन्म से सारे वृंदावन में अत्यधिक उल्लास था, हर व्यक्ति खुशी से फुला नहीं समा रहा था। इसलिए ब्रजराज महाराज इन नंद ने इस शिशु का जन्मोत्सव मनाना चाहा और उन्होंने इसे मनाया भी। इस महोत्सव में उन्होंने उपस्थित लोगों को मुंह मांगी भेंट दी। उत्सव के बाद नंद महाराज ग्वालों के ऊपर गोकुल की रक्षा का भार सौंप कर कंस को कर चुकाने के लिए स्वयं मथुरा गए। मथुरा में नंद महाराज की भेंट वसुदेव से हुई। वे दोनों भाई भाई थे। वसुदेव ने नंद महाराज के भाग्य की सराहना की, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि कृष्ण ने नंद महाराज को अपना पिता मान लिया है। जब वसुदेव ने शिशु की कुशलता के विषय में नंद महाराज से पूछा तो उन्होंने वृंदावन के विषय में सारी बातें बतलाई। वसुदेव यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। यद्यपि कंस के द्वारा देवकी के अनेक शिशुओं को मारे जाने का शोक भी उन्होंने व्यक्त किया, नंद महाराज ने वसुदेव को यह कहकर ढाढ़स बंधाया कि हर कार्य प्रारब्ध के अनुसार होता है, अतः जो इसे जानता है वह दुखी नहीं होता। वसुदेव को गोकुल में अनेक उत्पातों की आशंका थी, इसीलिए उन्होंने नंद महाराज को सलाह दी कि वे मथुरा में अधिक न रुके, अपितु जितनी जल्दी से हो सके वृंदावन लौट जाए। इस प्रकार नंद महाराज ने वसुदेव से विदा ली और ग्वालों समेत अपनी अपनी बैलगाड़ियों में चढ़कर वृंदावन लौट गए। श्री शुक उवाच, नन्दः तु आत्मजे उत्पन्ने जात आह्लाद महामनाः आहुः विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिः अलंकृतः वाचयित्वा स्वस्ति अयनम जात कर्म आत्मजस्य वै कारयाम आस विधिवत पितृदेव अर्चनम तथा। श्री शुक उवाच, नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामनः आहूय विप्रान् वेदान् ज्ञात्स्नातः शुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा स्त्वयनयम्नं जात जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। श्रीशुक उवाच, नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः लादौ महामना आहूय विप्रान् वेदस् ज्ञास्नातः शुचि अलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्त्वयनम् जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। श्रीशुक उवाच, नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जातालादौ महामनः आहूय विप्रान् वेदान् ज्ञास्नातः शुचिलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्तनयनम् जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृर्देवा। श्री शुक उवाच, श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, नंद महाराज नंद, तू निसंदेह आत्मजे अपने पुत्र के उत्पन्न होने में जात अभिभूत हुए, आह्लाद अत्यधिक हर्ष, महामना विशाल मन वाले आहुय बुलाया विप्राण ब्राह्मणों को, वेद ज्ञान वेदों के ज्ञाता स्नातः स्नान करके शुचि अपने को शुद्ध करके अलंकृतः सुंदर आभूषणों तथा नए वस्त्रों से सज्जित वाचयित्वा पाठ करके स्वस्ति अयनम ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्र जात कर्म जन्मोत्सव आत्मजस्य अपने लड़के का वही निसंदेह कारयाम आस संपन्न किया विधिवत वैदिक विधान के अनुसार पितृदेव अर्चनम पूर्वजों तथा देवताओं की पूजा तथा साथ ही साथ अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमदेशी भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद के द्वारा सुखदेव गोस्वामी ने कहा। नंद महाराज स्वभाव से अत्यंत उदार थे, अतः जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके पुत्र रूप में जन्म लिया तो वे हर्ष के मारे फूले नहीं समाए। अतएव स्नान द्वारा अपने को शुद्ध करके तथा समुचित ढंग से वस्त्र धारण करके उन्होंने वैदिक मंत्रों का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को बुलाया भेजा। जब वे योग्य ब्राह्मण शुभ वैदिक स्त्रोत्रों का पाठ कर चुके तो नंद ने अपने नवजात शिशु के जात कर्म को विधि संपन्न किए जाने की व्यवस्था की। उन्होंने देवताओं तथा पूर्वजों की भी पूजा का प्रबंध किया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने नंदस्तु शब्दों के महत्व की व्याख्या की है। उनका कहना है कि तु शब्द वाक्य की पूर्ति के लिए ही नहीं आया, क्योंकि यह वाक्य तु शब्द के बिना भी पूर्ण है। अतः तु का प्रयोग किसी भी भिन्न प्रयोजन से किया गया है। यद्यपि कृष्ण देवकी पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, किंतु वसुदेव तथा देवकी जात कर्म का आनंद उठा नहीं पाए थे, उल्टे इसका आनंद लिया नंद महाराज ने, जैसा कि यहाँ बतलाया गया है कि नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। जब नंद महाराज वसुदेव से मिले तो वसुदेव ने यह प्रकट नहीं किया था कि तुम्हारा पुत्र कृष्ण तो वास्तव में मेरा पुत्र है, तुम जो आध्यात्मिक रूप से उनके पिता हो। कंस के भय के कारण वसुदेव कृष्ण का जात कर्म नहीं मना सके, किंतु नंद महाराज ने इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाया। जात कर्म नवजात शिशु के नाल काटते समय का उत्सव है, किंतु कृष्ण को तो नंद महाराज के घर ले गया जाया था, अतः एवं इसके लिए यहाँ अवसर था। इस प्रसंग में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अनेक शास्त्रों के प्रमाणों से यह सिद्ध करना चाहते हैं कि कृष्ण ने यशोदा के कोख से योग माया के पहले ही जन्म ले लिया था, इसीलिए योग माया उसकी छोटी बहन कहला जाती है। भले ही नाल काटने के बारे में कुछ शंकाएं हों और भले ही कृष्ण का नाल न काटा गया हो, किंतु जब भगवान प्रकट होते हैं तो ऐसी घटना यथार्थ मानी जाती है। कृष्ण ब्रह्मा के नथुनों से वराहदेव के रूप में प्रकट हुए तो ब्रह्मा को वराहदेव का पिता कहा जाता है। कारयाम आस विधिवत शब्द भी महत्वपूर्ण है। पुत्र जन्म के हर्षातिरेक में के कारण नंद महाराज ने देखा ही नहीं कि पुत्र का काल का नाल कटा अथवा नहीं। इस तरह उन्होंने बड़ी ही धूमधाम से उत्सव मनाया। कुछ विद्वानों के अनुसार कृष्ण वास्तव में यशोदा के पुत्र में उत्पन्न हुए थे। जो भी हो, हम इस पचड़े में न पड़कर यह मान सकते हैं कि नंद महाराज द्वारा कृष्ण के जन्म पर किया गया यह उत्सव उचित था, इसीलिए यह उत्सव हर जगह नंदोत्सव कहलाता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा महे। नमः श्री गुरुः श्रीजुता पदकमलम् श्रीगुरुन् शैवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री शुक उवाच। सुखदेव गोस्वामी ने कहा नंद महाराज स्वभाव से अत्यंत उदार थे, अतः जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके पुत्र रूप में जन्म लिया तो वे हर्ष के मारे फूले नहीं समाए, अतएव स्नान द्वारा अपने को शुद्ध करके तथा समुचित ढंग से वस्त्र धारण करके उन्होंने वैदिक मंत्रों का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को बोला भेजा। जब ये योग्य ब्राह्मणों शुभ वैदिक स्त्रोत्रों का पाठ कर चुके तो नंद ने अपने नवजात शिशु के जात कर्म को विधिवत संपन्न किए जाने की व्यवस्था की। उन्होंने देवताओं तथा पूर्वजों की भी पूजा का प्रबंध किया। श्रील प्रभुपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की समझ के अनुसार हमें हमेशा अवगत कराते हैं कि भगवान की लीला कैसे समझनी चाहिए। भगवान की लीला वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में जब हुई तब ये स्पष्ट किया गया था कि भगवान योग्य समय पे यानी कि जैसे सातवां गर्भ देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया उनके तुरंत पश्चात भगवान ने अवतरण की सारी व्यवस्था कर दी। सारी सृष्टि इनकी आज्ञा के अनुसार अनुकूल बनी है। जो द्वेषी थे इनको सुला दिया था, सही किसी को समझ में ही नहीं आए। बाद में वो वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए हैं। वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए हैं। वसुदेव ने देवकी को दीक्षा द्वारा उसके हृदय में स्थापित किए और देवकी अत्यंत तेजस्वी बन गई। तब देवताओं ने जो शरीरधारी है उन्होंने क्या समझा, हाँ देवकी इतनी तेजस्वी है तो अवश्य भगवान ने उसके उदर में स्थान लिया, इसलिए तुरंत दौड़ के आए और प्रार्थना करने लगे। बहु तेरा तो बहुत बड़ा भाग्य, हम तो राह ही देखते थे। देखो देवताओं की समझ अलग बन गई है। विशुद्ध भक्ति में तीन गुणों का अभाव होता है, लेकिन जब उसे किसी देहधारी के द्वारा हम समझते हैं तो थोड़ा विपरीत लगता है। क्या आध्यात्मिक अवस्था को छोड़कर लोक संग्रह समाज को कैसे बतावे, तो देवताओं की समझ के अनुसार कुछ अलग रहा। चलो देवताओं तो चले गए, भगवान ने बिना जात कर्म देवकी के गर्भ बिना समक्ष वसुदेव देवकी के समक्ष आ गए, और वो भी चतुर्भुज नारायण के रूप में आ गए। जात कर्म कहां हुआ? सही, तो देवकी और वसुदेव ने उनको पहचान लिया कि हम तो आपको जानते थे, आपको कहां बुलाया था, हमें तो नवजात शिशु चाहिए कि बाल्य लीला का सारा दर्शन जगत को कराए कि आप कौन हैं। तो आर्ग्यूमेंट चालू है, अरे जेल में कहां बाल्य लीला होगी, तो सारी व्यवस्था भी उन्होंने कह दी कि वसुदेव हमें ले जाओ और आपको और कड़ी तपश्चर्या करनी पड़ेगी थोड़े साल। तो दोनों मंजूर हैं, कितनी आध्यात्मिक स्थिति जेल में बनी रही है कि दोनों को मंजूर है कि भगवान आपके लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। तीन तीन युगों तक हमने तपश्चर्या की है, एक नहीं, और तीनों युगों में हमें तो अपनी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, इसमें भी क्या, हम तो आदत ही बन गए हैं, आप लीला करो बहुत देखा, बाद में देखेंगे, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो इतना देवकी और वसुदेव को विश्वास था ऐसा, क्योंकि ये भगवान जब साक्षात आते हैं तो हमारा विश्वास ये वर्णन द्वारा विचलित नहीं होना चाहिए। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो समझ है, उनके उनके जो तात्पर्य में बताया है, बहुत लाक्षणिक है, क्योंकि हम इनकी मत अनुसार जो हमारे विधिवत आता है परंपरा में, तो ये जो सत्य को पकड़ना काफी आवश्यक है, तब हम ठीक ढंग से समझ पाते। प्रभुपाद समझाते हैं कि देखो नंद महाराज वृंदावन में है, वो सामान्य जनता के समक्ष अपना भी स्वभाव उत्तम रख कर, व्यवहार तो भौतिकवादी लोगों का ही लाक्षणिक रूप से करते हैं, पितरों की पूजा करने की क्या आवश्यकता थी, देवताओं की पूजा की भी क्या आवश्यकता थी, पर फिर भी उन्होंने जात कर्म के लिए भी सारी व्यवस्था कर दी, लेकिन हुआ कि नहीं वो तो राम जाने, उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते देखो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक तू शब्द है वो कितना भारी है, वो बताते हैं नंदस्तु। तो उनका कहना है कि तू शब्द वाक्य की पूर्ति के लिए नहीं आया, वाक्य की पूर्ति यानी कि पूर्ण विराम तो इसके बिना भी हो सकता था, क्योंकि नंद आत्मज उत्पन्ने कह सकते हैं, नंद महाराज ने बेटा पैदा होने के समय वो जाता लादो बहुत खुशी के फूले समाए नहीं, और महामना है, उदार दिल वाले हैं, तो सब लोगों को जुड़ने का प्रयास, ये तो सोशल आदमी है, सोशल बन गए, समाज को देखते हैं, कह रहे हम इतने बूढ़े हैं, बुढ़ापे में बेटा पैदा हुआ है, कितना फूले समाए नहीं। तो उन्होंने जो विधिवत अपने को शुद्ध करा, सुतक होता है, शुद्ध कर लिया और समुचित ढंग से वस्त्र धारण करके उन्होंने वैदिक मंत्रों का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को भेजा कि चलो हाँ बेटा पैदा हुआ है तो ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए, जात कर्म करना चाहिए, ये चाहिए चाहिए चाहिए। लेकिन भगवान की योग माया से वास्तव में वहां कोई जात कर्म हुआ ही नहीं, तो उसका कारण बता देते हैं। यशोदा के पेट से तो योग माया पैदा हुई थी, सही ना, तो उसका शायद जात कर्म कर सकते थे, पर योग माया भी भगवान की आज्ञा के अनुसार जात कर्म की राह नहीं देखती, वो तो वसुदेव ने उठा लिया क्योंकि वो बैठी थी, वहां कौन जात कर्म करने आया था, और रात को 12 बजे कोई दायन भी नहीं मिलती सही तो भगवान ने सारी व्यवस्था अपने आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा कर चुके हैं। आध्यात्मिक शक्ति का प्रगटीकरण भौतिक शक्ति में हो सकता है, लेकिन भौतिक शक्ति का प्रगटीकरण आध्यात्मिक शक्ति में नहीं होता, यानी कि भौतिक शक्ति द्वारा हम अध्यात्म की पहचान भी नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें परंपरागत जो परम सत्य हमें मिलता जाता है तो उसके अनुसार समझने की आवश्यकता होती है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अनेक शास्त्रों के प्रमाण से यह सिद्ध करना चाहते हैं कि कृष्ण ने यशोदा की कोख से योग माया के पहले ही जन्म ले लिया था, इसलिए योग माया उसकी छोटी बहन कहलाती है। पर लेकिन मथुरा से गोकुल जाने के दरमियान वो पैदा हुई होगी, वो भी बिना जात कर्म। कितना समय लगता है मथुरा से हम यदि गोकुल जाए तो? आधा घंटा, वहां तो शॉर्टकट ले लिया था और भी यमुना में से निकल के सीधे पहुंच गए थे, तो आधा घंटा भी नहीं लगना चाहिए। हम तो घूमते फिरते मथुरा से महावन के रास्ते से जाते तभी काफी समय निकलता, लेकिन ये तो शॉर्टकट यमुना से चले गए तो कहने का मतलब है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये समझाना चाहते हैं कि जहां योग माया का भी जात कर्म नहीं हुआ है, कोई बताता है उसका उल्लेख है ही नहीं, तो कृष्ण के जात कर्म की बात कहां आई गई? वो तो उल्लास में हम पागलपन बता देते हैं कभी कभी कि चलो मन में हम बहुत सारी भावना बताते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा ये करूंगा, तो इतने हर्षोल्लास में ये भावना अलोप हो जाती है। हम समझते हैं कि हमने सारा प्लान बना रखा है, क्या होता है क्या नहीं है, तब भगवान तो प्लान को भी उल्लंघन कर सकते हैं, हमारे प्लान को उल्लंघन कर सकते हैं, उसके प्लान के अनुसार काम करना पड़ता है। तो भगवान ने जो प्लान किया है उसके अनुसार समझने की आवश्यकता रहती है। हमारे यहां वृंदावन में जाओगे, भगवान वृंदावन में तो पैदा हुए ही नहीं, मथुरा में पैदा हुए, तो कृष्ण जन्मोत्सव तो वहां मनाया जाता है, लेकिन ब्रजवासी कहते हैं कि यशोदा ने जैसे कृष्ण को जन्म लिया और जात कर्म की बात आ रही है तो चलो हम भी सुतक पालते हैं। तो आप वृंदावन में जाओगे, 12 बजे के बाद आपको दर्शन नहीं मिलेंगे जब तक रात को 12 बजे नहीं होते। क्यों भैया, पर्दा बन गया है? तो कहते हैं सूतक, यदि ये सूतक के समय में हम वहां उपस्थित होते हैं तो नाना धोना सब कुछ पड़ेगा। और कृष्ण भगवान जब पैदा हुए तो न तो बच्चे की रोने की आवाज आई है न किसी की, तो फिर भी किसी बच्चे को खड़े करके उसे चिमकी देते हैं तो वो रोने लगता है, हाँ देखो बच्चा रोने लगा, जात कर्म अभी करो, हो गया। बच्चा कब रोता है? रोके आता नहीं, उसको रुलाया जाता है, नाल काटते समय ही रोता है, उसे पहले नहीं। यदि नाल काटी फिर भी नहीं है तो थप्पड़ मारते हैं उसके पीठ पर, तब रुलाते हैं, फेफड़ा निकालो खुला करो। ये तो सारा भौतिक काम है, भगवान ऐसे वैसे थोड़े आते हैं, न तो गर्भ से पैदा होते हैं, वो तो स्वयं ठाके हंसते हंसते आते हैं, खड़े हो जाते हैं सामने, और वो भी अस्त्र शस्त्र और खड़े होते हैं। अरे बच्चा खड़ा थोड़ा रहता है, ये तो कमल पे खड़े हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर खड़े हैं। तब बाजी सुधारने के लिए देवकी और वसुदन वसुदेव प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको तो हम जानते हैं, आपको नहीं बुलाया, बच्चा बच्चा लाओ। तो भगवान चतुर्भुज से होकर भी बच्चे जब बन गए तभी भी रोए नहीं है और आदेश देने, हे वसुदेव टोकरी में से उठाओ ले जाओ हमें, सारी योग। तो ये योग माया का प्रताप है, और योग माया स्वतः अपने आप वहां भगवान के आदेश अनुसार यशोदा के पास प्रकट हुई है और आदेश देते हैं उसे, हम एक्सचेंज कर दो और आप ले जाओ, योग माया अपने आप को संभाल लेगी, फिक्र मत करना। तो कितना आत्मविश्वास। और पिता ये नहीं सोचता है कि ये बच्चा मुझे आदेश दे, मुझे बच्चे को संभालना है। हाँ, कोई कहता है ये बच्चा बोलते ही हुए पैदा हुआ है, अरे चल बहुत कर बंद कर, तो मैं जानता हूं मैं पिता हूं, मैं तेरी संभाल करूंगा, ज्यादा सलाह मत दे। अभी से सलाह देने लगा, पैदा होते कोई सलाह देता है? उसको खाने पीने के अलावा तीसरा कोई भान नहीं है। फिर भी सामाजिक दृष्टि से जो भावना है वो भावना सही है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन समझ में आनी चाहिए। और जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की समझ के अनुसार हम उसको अध्यात्म में पलट सकते हैं, स्वतः नहीं। गलत फहमी नहीं करना, समझने के लिए ये सारी घटना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि हर एक लीला के पीछे आलादीन शक्ति के माध्यम द्वारा ही भगवान लीला करते हैं। आलादीन शक्ति कौन है भाई? राधा रानी। राधा रानी की बहुत सारी सेविकाएं हैं जो वृंदावन में हमेशा भगवान के प्रेम उल्लास बढ़ाने के लिए ही सारी लीला होती है, कोई दर्द वाली बात नहीं, दर्द में भी आह्लाद होगा। भगवान के हर एक अवतार में, रामचंद्र के अवतार में तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नौवें स्कंद में बताते हैं सारे भगवान का सार, रामचंद्र जी का सीता के विरह में जो व्यवहार है उसमें ये तो अल्लादिनी शक्ति का प्रमाण है। तस्य प्रेमावत्स्य भाव, प्रेम के आवेश में, अरे तो विशुद्ध प्रेम के आवेश में अति गुह्य और गहरी प्रेम की भावना विकसित होती है। ये रोने धोने का धंधा नहीं है जो जैसे मनुष्य रोते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि लादिनी शक्ति इसके पीछे काम कर रही है, उसके बिना भगवान कोई भी लीला नहीं कर सकते। तो राधा रानी से भगवान बिछुड़ते हैं ऐसा भी भाव गलत पड़ता है, कि सीता रामचंद्र से भी बिछोड़ी जाती है, ऐसा भाव इतनी समझ भी गलत है। तो अपने संप्रदाय में विशुद्ध भक्ति के लिए ये समझ की आवश्यकता बताया, वो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा हमें प्राप्त होती है। हाँ, तो या वो बताते हैं कि कृष्ण ब्रह्मा के नथुनों द्वारा वराहदेव के रूप में भी प्रकट हुए, तो ब्रह्मा को वराहदेव का पिता कहा गया, तो कारम आस विधि शब्द महत्वपूर्ण है। पुत्र जन्म के हर्षा अति हर्ष के आवेग में पिता क्या क्या नहीं करता, तो बहुत सारा ओवरलैपिंग हो जाता है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये सारी भावना क्या किया कितना किया, वो तो कोई नहीं किया तो भी क्या हुआ, सब हर्षोल्लास में कवर अप हो जाता है। तो जात कर्म किया न किया उस पर हमें बहुत बहस नहीं करनी चाहिए, भगवान का जात कर्म होता ही नहीं, क्योंकि जन्म कर्म जो मैं दिव्यम एवं व्यक्ति तत्वता तत्वतः क्यों कहा, क्योंकि तत्वतः तो हमें परंपरा से प्राप्त होता है। एवं व्यक्तियों तत्व त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति, ये इफेक्ट क्यों है, जब तत्व से जानते हैं तो पुनर्जन्म ही मिट जाता है। इसका मतलब क्या है, हमारा अस्तित्व भौतिक न रहकर आध्यात्मिक बनता, चाहे यही शरीर हो, तो शारीरिक शुद्धि सिर्फ पानी से नहाने से नहीं होती, भगवान के नाम के प्रताप से होती है, क्योंकि आध्यात्मिकता में अपना सारा कण कण भी शुद्ध होता है, जैसे अर्जुन का था। भगवान का इतना घनिष्ठ मित्र, उसको तो सब ज्ञात था, लेकिन भगवान ने उसके द्वारा हमें समझाने की कोशिश करी। युधिष्ठिर को नहीं समझाया, क्योंकि युधिष्ठिर पहले से ज्ञात थे, उनकी स्थिरता युद्ध में यानी किसी भी प्रकार के विरोधाभास में भगवान पर परम सत्य पर चिपकी रहती थी। इतनी सारी गहरा युधिष्ठिर में है, अतः विशुद्ध भक्त है, उनकी गलती नहीं है कोई, जो नहीं गलती करता है तो दूसरों पर कैसा भाव रखेगा, समानता ही रखेगा, किसी के पर ईर्ष्या नहीं होगी, तो छोटी सी ईर्ष्या भक्ति में कितनी बाधा पैदा कर देती है। इसलिए तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन मैं तुझे मेरा अति गुह्यतम ज्ञान इसलिए कहता हूं कि तू मेरा द्वेषी नहीं है, प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, तो मेरा द्वेषी नहीं है, तो विशुद्ध भक्ति के लिए हमें सारे द्वेषों को मिटाने की आवश्यकता है, बिना कोई कंपटीशन की भावना भी नहीं होनी चाहिए। भगवान के आनंद के लिए भगवान ही अपने विशुद्ध भक्तों को कंपटीशन में उतारते हैं, वो इनकी सत्ता है, हमारी तो मर्यादा है, तो मर्यादा में हमें जो पालन करना है तो वो श्रील प्रभुपाद जी ने बता दिया है, आपस में कोई बैर न हो, कोई कंपटीशन न हो, ऐसा भाव जो हमें सेवा सौंपी जाती है तो ऊपरी अधिकारी से कोई मस्का मारने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ईर्ष्या भाव पैदा होगा। सारी दुनिया इसी की चपेट में है, हमारे कई भक्त लोग भी ऐसी चपेट में आते हैं जो समझते ही नहीं। तो आगे कैसे बढ़ेंगे जब हम ये सारी, अभी तो दसवें स्कंद में आप हो, तो दसवें स्कंद में तो ये पूर्णतया समझने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ एक भी प्रसंग है रूप गोस्वामी इनके अनुसार कृष्ण भगवान वास्तव में यशोदा के पुत्र में उत्पन्न हुए थे। कई विद्वानों के अनुसार ये है के वास्तव में यशोदा के पुत्र में उत्पन्न हुए थे, लेकिन प्रभुपाद जी क्या कहें, जो भी हो हम इस पचड़े में न पड़कर यह मान सकते हैं कि नंद महाराज द्वारा कृष्ण के जन्म पर किया गया यह उत्सव उचित था। हमें ये कंट्रोवर्सी में आने की आवश्यकता क्या है? कई विद्वान मानते हैं कि रावण ही महान है, रामचंद्र नहीं है, और रावण की पूजा करते हैं। साउथ इंडिया में जाओ मिलेगा, वो भी क्या क्या नहीं श्लोक बोलते हैं। अंग्रेजी में कहावत है कि इवन ए डीमन कैन क्वोट, इवन ए डीमन कैन क्वोट। तो सब अपना अपना व्यापार चलाते हैं, लेकिन हमें तो काफी उदार भाव से परम सत्य पाने के लिए संकुचित बनना पड़ता है। अरे एक तरफ उदार भाव, दूसरी तरफ संकुचित। हाँ तुम द्विधा में हो, ड्युअलिटी में हो, पैदा हुए हैं ड्युअलिटी में। सत असत का परिचय नहीं करते, कुछ नहीं करते, स्थिर बुद्धि नहीं रखते, भगवान की तरफदारी वाली भी बुद्धि नहीं है। क्योंकि जो कुछ हमारे पर यदि भौतिक दृष्टि से कुछ बिगड़ जाता है तो हम काफी विचलित हो जाते हैं। जब भगवान अपने स्थान पर रह जाते हैं, हम अपने पुनः भौतिक स्थान में आ जाते हैं। तो ये परिस्थिति को लांघना है। जैसे भक्त भक्ति में प्रगति करता है तो उसके चरित्र में ये बदलाव आना चाहिए, नहीं तो फायदा क्या है? सही प्रभुपाद जी कहते हैं कि डोंट फीड ऑन योर कॉन्ट्रोवर्सीज। हमें कई लोग ऐसे हैं, ऋत्विक लोग कंट्रोवर्सी में ज्यादा एंजॉय करते हैं। किसी न किसी ढंग से कंट्रोवर्सी पैदा करो। उसी तरफ ये भी FDG वाले, FDG यानी कि फीमेल दीक्षा गुरु, उसमें भी कंट्रोवर्सी में फीड करने वाले बहुत हैं। जानते होंगे, आता है कुछ अखबार, इंटरनेट पर भी आता होगा, कहीं ना कहीं आता होगा। प्रभुपाद जी कहे कि इस पचड़े में न पड़कर हम मान तो सकते हैं कि नंद महाराज ने बड़े धूमधाम से कृष्ण जन्म का उत्सव किया था, वो उचित ही है। तो ये नंदोत्सव प्रभुपाद जी का जन्मदिन है, हमारे लिए अध्यात्म का जन्मदिन होता है। नंदोत्सव में तो एक खाने पकाने के पीछे ही पड़े होते हैं हम। भगवान को 56 भोग चढ़ना ही चाहिए, जितना बनाओ लाओ, नंद महाराज का उत्सव। पर हमारा ध्यान सिर्फ खाने पकाने पर पड़ता है. रियल एंजॉयमेंट इज दिस, समझदारी का है कि हम नंद महाराज के स्वभाव को अपना कर अपना स्वभाव ऐसा बनावे. भगवान के संबंध में ही उन्होंने जो कार्यवाही की, चाहे भौतिक हो अभौतिक हो, इसमें बीच में जाने की आवश्यकता क्या है, कंट्रोवर्सी करने की जगह नहीं, समाधान करने की ही भावना बनानी चाहिए. समाधान अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के वचनों द्वारा होता है. श्रील प्रभुपाद हमेशा जीव गोस्वामी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती, बलदेव विद्याभूषण, इनों के माध्यम से हमें देते हैं. तो वो अपना कुछ नहीं लिखते, उन्होंने अपने सारे पूर्ववर्ती आचार्यों का जो परम सत्य जानने का तरीका है, समझ है, वो हमें दी है. तो वो हमें याद रखनी चाहिए, तब हम ये भौतिक जंजाल से हम छूट पाएंगे. तो किसी को कोई प्रश्न है?
तुम्हारा मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जैसे जात कर्म भगवान का तो हो नहीं सकता क्योंकि भगवान का जन्म दिव्य है, तो नंद उत्सव में वैसे किस तरीके से व्रज में इसको मनाया जाता है? यार जैसे आप बताया तो उसमें सूतक भी लगता है और लोग उसको अपने आप को शुद्ध भी करते हैं, तो क्या वो जात कर्म बनाते हैं या कैसे, किस तरीके से नंद उत्सव मनाया जाता है? श्याम प्रभुपाद जी कह रहे हैं
तो जब हम वृंदावन में 1993 में आए थे, तब इस्कॉन में तो हम ज्यादा नहीं करते, लेकिन जब इस्कॉन इन सारे मायावादियों आश्रमों द्वारा घिरा हुआ है, तब उसकी इन्फ्लुएंस भी आती. यदि हम भगवान के दर्शन खुले रखते हैं तो वो लोग टोना मारते हैं, कैसे करते हैं, इसीलिए हमें भी बंद रखना पड़ता है. ना दूसरा, क्योंकि राधा रानी के चरण कमल गोपाष्टमी पर दर्शन कराते हैं. प्रभुपाद जी कहते हैं ये कहाँ है, अपने शास्त्रों में तो है ही नहीं. अरे राधा रानी के जन्मदिन राधा अष्टमी पर दर्शन खुले करते हैं, हमें कराना पड़ता है. आप देखोगे बहुत सारी चीजें घुसपैठी कर चुकी है, और वो भी गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सतक्रियाशार लिखा है, वो उसका कई भाग आपको सनातन गोस्वामी की हरिभक्ति विलास में मिलेगा, लेकिन पूरे पूरा नहीं मिलेगा. कहा गया है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के बहुत सारे मित्र स्मार्थ ब्राह्मण इत्यादि थे, तो उनकी इन्फ्लुएंस इसमें थी, इसलिए सनातन गोस्वामी ने छानबीट करके. नहीं तो हरिभक्ति विलास का सारा संकलन गोपाल भट्ट गोस्वामी ने किया. ये भेद क्यों? हरिभक्ति विलास में गोपाल भट्ट गोस्वामी का कोई आपको मिलेगा नहीं, पर लेकिन ऐतिहासिक घटना ये है कि सत्क्रिया सार में इन्फ्लुएंस है, क्योंकि इनके मित्र थे, सही। तो इसीलिए सनातन गोस्वामी आए और कई पोर्शन हटा दिए। हम तो दोनों लेते हैं हाथ में, वेद नहीं समझते, पर फिर भी अधिकृतता वाला ये हरिभक्ति विलास बताया है प्रभुपाद जी ने। उसी तरह चैतन्य चरितामृत हमारी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, नहीं कि चैतन्य भागवत। हम किसी का अपमान तो नहीं करते हैं। वृंदावन दास ठाकुर तो व्यासदेव के अवतार है, फिर भी चैतन्य चरितामृत क्यों? भगवद गीता में तो श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता के अलावा हम दूसरी तक टच भी नहीं करते हैं, है ना? ये कोई फनाटिज्म थोड़ा है। और श्रीमद भागवतम भी प्रभुपाद जी का, उसका इतना महत्वपूर्ण भाग है। हमने देखा था बड़े मंदिर में अपने स्तूप कैलाश वाले श्रीमद भागवतम की पढ़ाए श्रील प्रभुपाद जी ने जहां तक ट्रांसलेट किया था, 8 अध्याय पहले कितने अध्याय तक, 10वें स्कंद के है? हाँ, तो वहां तक ही पढ़ते हैं, बाद में फिर से 1वां स्कंद चले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हृदयानंद गोस्वामी और गोपी परानंदन प्रभु ने गलत काम किया है, नहीं। जो हमें प्राप्त होना है तो श्रील प्रभुपाद जी की किताबों में से पर्याप्त है, परफेक्ट है, पर्याप्त है। पूर्णता तो करनी चाहिए, पर लेकिन ये नहीं कह सकते कि प्रभुपाद अपूर्ण है। तो इस्कॉन का जो अगुआ अपना पन होता है वो मिश्रित नहीं होना चाहिए। अभी वही FTG वाले कहते कि ये इस्कॉन आजकल का इस्कॉन अपसंप्रदाय बन गया है, अब कहां जाओगे आप? यानी कि ये वो लोग अपसंप्रदाय होते हैं, प्रभुपाद जी का आधार नहीं लेते, वो दूसरों का आधार लेते हैं स्थापित करने के लिए, के सामान्यतया स्त्रियों को गुरु बनने की आज्ञा नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा है, इसका क्या है? हाँ, मेरे सारे बेटे बेटियां जो भक्ति वेदांत करेंगे उनको सबको गुरु बनने की छूट है, करो। तो ये सारी कंट्रोवर्सी में हमें नहीं जाना है, वी शुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन टू, यू नो। बहुत सारे अन्य अन्य शास्त्रों या ये कंट्रोवर्सी में जीना चाहते, दे वांट टू फीड themselves on the controversy, as if controversy is very much enjoyable. Maro goli is be a simpleton, you know. Aur koi prashna? Yes. माइक में बोलो।
हरे कृष्ण गुरु महाराज, इसमें एक थोड़ी शंका थी, कृष्ण भगवान का जन्म पहले हुआ और योग माया उनके बाद में आई, तो इस सारी लीला में शक्तियां तो कृष्ण भगवान की काम कर रही थी, तो हम योग माया को श्रेय क्यों देते हैं कि सब में इसमें योग माया कर रही थी?
तो कृष्ण की शक्ति और कृष्ण को अलग कैसे कर सकते हैं? हम नहीं करते हैं, लेकिन छोटी बहन यानी कि भगवान ने आज्ञा दी तभी तो पैदा हो गई ना, और पैदा होने में बात कितनी है आसान है, तुरंत नहीं तो क्या देवकी के साथ वे गर्भ को स्थानांतरित करके क्या तुरंत कोई पैदा हो जाता है क्या? वैसे एपरेंट यानी के ऊपर ऊपर वाली दृष्टि से हमें कंट्रोवर्सी लगती है, विरोधाभास लगता है, लेकिन भगवान के संबंध में कोई विरोधाभास नहीं, क्योंकि उनकी ही शक्ति उनकी ही आज्ञा में काम करे तो तुम्हारा क्या जाता है, तुम्हारी आज्ञा में काम करना चाहिए क्या? तो फिर आपकी अध्यक्षता में क्या भौतिक प्रकृति भी काम कर रही है क्या? नहीं, मैं अध्यक्षेन प्रकृति स्वेति सचराचर, मेरे अलावा कोई हेतु ही नहीं, दूसरा कोई कारण भी नहीं है, तो हम क्यों दखलगिरी करें इनमें से? ये मत मतांतर वाले बहुत हैं, इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा ही इतनी आवश्यक है कि सारी चीजों का समाधान कर देती है, उसके अनुसार जाओ। ये है सतोवृत्ति, सतोवृत्ति यानी अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण कमल में चलना। यदि कुछ समझ नहीं आती तो वो समझाते हैं, अब प्रभुपाद जी इनको ही प्रकट करते हैं। श्री प्रभुपाद की।